ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्राये सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 38 हम लोग पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत मार्मिक श्लोक है। इत्थम नृ तिरजा ऋषि देवा झसावतारे इत्थम नृतिजग ऋषि देव झसावतारे लोकान विभावयसि हंसि प्रतिपान जगत प्रतिपान लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुषम पासि जुगानुवृत्तम धर्मम महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगो अथ शतम् इत्थम नृतिर्जग ऋषि देव झसावतारे लोकान विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम् छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगोऽथ शतम् इत्थम नृतिर्जग ऋषि देव झसावतारे लोकान विहवयसि हंसि जगत् प्रतिपान धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम् छन्न कलो जदवह त्रिजुगोथ सतम् इत्थम नृतिर्जग ऋषि देव झसावतारे लोकान विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम् छन्न कलो जदभव त्रिजुगोथ सतम्
बढ़िया। जगत सिद्ध भजसावतारे लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान धर्म महापुरुष पासि जुगान वृत्तम छन्ना कलो जदभव त्रिजुगोथ सतम त्रिजगर्षि देवझसावतारे लोकान विभवसि हंसि जगत प्रतिपान महापुरुष पासि जुगान वृत्तम त्रिजगर्षि देवझसावतारे लोकान विभवसि हंसि जगत प्रतिपान महापुरुष पासि जुगान वृत्तम
श्रील प्रभुपाद कर्थिक शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इत्थम इस प्रकार नृ मनुष्य जैसे यथा कृष्ण तथा रामचंद्र तिरजक पशु की तरह का जैसे शुकर ऋषि महान ऋषि की तरह परशुराम देव देवतागण झस जलचर जैसे मछली तथा कछुआ अवतार ऐसे विभिन्न अवतारों के द्वारा लोकान सारे लोगों को विभावयसी रक्षा करते हो हंसी कभी कभी मारते हो जगत प्रतिपान इस संसार में बाधा उत्पन्न करने वालों का धर्मम धार्मिक सिद्धांतों को महापुरुष हे महान पुरुष पासी रक्षा करते हो जुगानुवृत्तम विभिन्न युगों के अनुसार छन्ना ढका हुआ कलो कलि युग में जत क्योंकि अभव हुए हैं और भविष्य में होंगे त्रिजुग त्रिजुग के समान त्रिजुग नामक अथ अते सह अहि पुरुष तम तुम हे प्रभु इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य पशु ऋषि देवता मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं हे भगवान युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं किंतु कलि युग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते इसीलिए आप त्रिजुग कहलाते हैं अर्थात तीनों युगों में प्रकट होने वाले भगवान। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जिस प्रकार मधु तथा कौटव के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे उसी प्रकार ये परम भक्त प्रह्लाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलियुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। इसी प्रकार
चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। युग चार है, सत्य त्रेता द्वापर तथा कलियुग। कलियुग को छोड़कर शेष तीन युगों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया, तब तब ये अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि ये एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। ये जानते थे कि कलियुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतएव ये अपने आप को भगवान कहे जाने से कतराते हैं। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम जग्गै संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसः। कलियुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं। कलियुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं। जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सर्वदा घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वो प्रत्येक वस्तु को भलीभांति जान लेता है। वो सुमेधसः अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। इसके पूर्व श्लोक में तस्मै भवान हयशिस्तनुवम हि बिभ्रत वेद द्रोह अतिबलो मधुकैट भाख्यौ हत्ता आनयस् श्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्तम तव प्रियतमं तनुमा मनन्ति। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि मधु कैठ वाक्खौ, जो असुर मधु और कैटव, वेद द्रोहो अति बलो, ये वेद के द्रोही थे और अति बलशाली थे। इनको हत्या करके, हत्वा आनयत् श्रुतिगणान, श्रुतिगण वेद को ला करके, और रजस तमश्च, मधु कैटव को कैसे थे, रज और तमगुण से प्रभावित थे, रज तमगुणी थे, इनको मारकर भगवान ने ब्रह्मा को वेद को लाकर दिया था। श्लोक का अर्थ स्पष्ट है, तस्मै भवान हयशिस्तनुवम हि बिभ्रत वेद द्रोह अतिबलो मधुकैट भाख्यौ हत्वान आनयत् श्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्तम तव प्रियतमं तनुमा मनन्ति। भगवान श्री कृष्ण दोनों असुरों को मार करके वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को दिए थे। भगवान एक ही काम नहीं किए, बहुत प्रकार के काम किए। इस श्लोक में आज इत्थम इस प्रकार, इसको तो मारा था मधुकैटव असुर को, जो असुर स्वभाव के थे, दोनों को मार करके वेद को ला करके ब्रह्मा को दिया। यह प्रश्न करते फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थम इस प्रकार, प्रह्लाद जी स्तुति करते कि इस प्रकार प्रभु आप एक ही काम नहीं किए, इस प्रकार बहुत सारे काम आपने किए। इत्थम ने तिरजक ऋषि देव जसा अवतार
निर्णय रूप में आपने मनुष्य के सेवा की, मनुष्य को जो परित्राणे साधनम विनाशाय जो दुष्कृतम, ये आपने किया है। निरी देव देवता के रूप में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवता रूप में प्रभु आए हैं। निरी भगवान श्री रामचंद्र और कृष्णचंद्र निरी रूप में आकर भगवान इस संसार का पालन किया। देव रूप में आए, ऋषि रूप में आए, झसा अवतार कछुआ मछली के रूप में आए, आकर के लोकान विधा वयसी लोगों को अपने पालन किया। आज जगत प्रतिपन हंसी जो जगत विरोधी जो दुष्कर्मी लोग है उसका आपने विनाश किया। धर्म महापुरुष पासे जुगान वृत्तम, धर्म का युग युग में जैसे जैसे धर्म का हानि हुआ आपने आकर के धर्म को रक्षा किया। धर्म महापुरुष, हे महापुरुष, हे प्रभु, आपने जैसे जैसे धर्म का ग्लानि हुआ उसी हिसाब से आकर के संसार को सुधारा आपने। धर्म महापुरुष पास युग के अनुसार युगान वृत्तम छन्न कलो, इस कलि युग में आपने छन्न छन्न भाव में अप्रकट रूप में रहकर भी कलि युग में आपने सेवा किया। छन्न कलो जद अभव त्रिजुग अथ सतम, इसलिए आपको त्रिजुग कहलाते हैं। युग शब्द का संज्ञा तृतीय स्कंध में एकादश अध्याय में तीन चार श्लोक हैं, वहां लिखे हैं कि युग किसको कहते हैं। युग जैसे सत्य त्रेता द्वापर कलि चार युग हैं, तो संधि होता है, फिर युग होता है, फिर संध्यांश होता है। संधि, युग और संध्यांश, एक युग में तीन चीज आता है। पहले संधि आएगा, संधि क्षण जैसे सत्य जैसे जब त्रेता युग आएगा तो सत्य त्रेता संधि क्षण आएगा, तुरंत युग का पलट नहीं होगा, पहले संधि क्षण आएगा। संधि जैसे सूर्य उदय होता है, पहले संधि उषा मुहूर्त, उसको दिन नहीं कहते, उसको प्रभात कहते। इसी प्रकार संधि जो प्रभात का मुहूर्त है, शुरुआत का समय है, उसको संधि कहते। और संध्यांश अंतिम समय के भाग भी, जैसे अंधेरा में श्री चैतन्य महाप्रभु संध्यांश समय अवतरित हुए, संधि क्षण में अवतरित हुए, तो श्रीमद् भागवत कहते जो संधि और संध्यांश के जो बीच में जो समय है इसको युग कहते। युग पूरा समय को युग नहीं कहते, संधि और संध्यांश के बीच में जो समय है, जैसे हमारे पास श्लोक नहीं, तृतीय स्कंध एकादश अध्याय 17, 18, 19, 20 चार श्लोक में इसका युग का सुंदर डेफिनेशन दिया। तो संधि और संध्यांश के बीच में जो समय है इसको युग कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु युग में नहीं आए, किस समय है, संधि में आए, इसलिए महाप्रभु को यहाँ लिखा नहीं जाता कि युग कहने से सारा गलत हो जाएगा शब्द। महाप्रभु युग में नहीं है, दिन में नहीं आए, महाप्रभु गोधुली बेला में आए हैं। तो इसलिए ये शब्द बहुत सुंदर, महाप्रभु कलि युग में नहीं आए, कलि युग के जो संधि क्षण है, संधि क्षण में महाप्रभु आविर्भूत हुए। इस बात को स्पष्ट मैंने पूरा स्पष्ट कर लेना चाहिए कि महाप्रभु युगावतार नहीं, कलि युग में आए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रूप में भक्त रूप में आए और संधि क्षण में आए। इसका अर्थ यह नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु भगवान किंतु युग में नहीं आए। युग किसको कहते, संधि और संध्यांश के बीच में जो समय है इसको युग कहते। इसका तृतीय स्कंध आप लोग अच्छा से देखना, तृतीय स्कंध एकादश अध्याय 18, 19, 20 ऐसे जहाँ काल की परिमाण का वर्णन है वहां युग का परिभाषा दिया है, युग किसको कहते। तो श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ चक्रवर्तीपाद टीका में बहुत सुंदर भाव दिए कि पहले श्लोक में कि भगवान एक को उद्धार के लिए आए थोड़ी आए, भगवान सभी के उद्धार के लिए आए, भिन्न भिन्न रूपों में आए, नृ रूप में, मनुष्य रूप में आए हैं, देव रूप में आए हैं, नृदेव ऋषि, ऋषि रूप में आए, झसा अवतारे जलचर कछुआ के रूप में आए, मनुष्य रूप में आए, प्रभु आकर लोकान विभा वैसी लोगों को पालन किया, और हंसी जगत प्रतिपान, हंसी जो जगत विरोधी जो दुष्कृतकारी है उसको विनाश किया। धर्मम महापुरुष पास युगान वृत्तम, इस पर युग युग में आकर उन्होंने धर्म की रक्षा की है। हे प्रभु आपको, आपको त्रिजुग कहलाते हैं, और इस कलि युग में छन्न कोलो, देखिये यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इंगित कर रहे, चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान किंतु छन्न रूप में है, प्रकटित रूप में महा श्री कृष्ण आप नहीं आए, आप छन्न रूप में आकर भक्त रूप में जगत का पालन पोषण किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण, इसका कोई प्रमाण दिए, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम जग्गे संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसा। जिनके वर्ण कृष्ण वर्ण, देखिए यह बहुत सुंदर है, कृष्ण वर्णम का शब्द अर्थ कर रहे हैं कृष्ण वर्णम, जिनका जिह्वा में कृष्ण का वर्ण स्वयं गा रहे और दूसरे को प्रचार कर रहे हैं, एक ही शब्द कृष्ण वर्ण, दूसरा शब्द का स्मरण नहीं करते, कृष्ण कृष्ण महाप्रभु जिह्वा में निरंतर कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम, यहाँ संधि अगर तोड़ेंगे तिशा अकृष्ण, कांति किस प्रकार की है, अकृष्ण गोपीत वर्ण है, तिशा कृष्णम सांगो सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, सांग स अंग, अंग के साथ में है, सांग उपांग है, और अस्त्र पार्षद के साथ महाप्रभु अवतरित हुए, जैसे अंग श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत नितंत, बाद में यहाँ हम लोग कबीरदास गोस्वामी भाषा में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु अंग उपांग अद्वैत और नित्यानंद, उपांग कौन है, गदाधर श्रीवास स्वरूप आदि भक्तगण सब ये उपांग के रूप में आते हैं। सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, पार्षद के साथ है, अस्त्र क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई भी दर्शन कर लेते तो उसका उद्धार हो जाता है, यही उनका अस्त्र था, उनका मनोहर रूप कोई अगर दर्शन कर ले तो उसका हृदय का जो कलमस है दूरीभूत हो जाते हैं। कलमस क्या है, न भक्ति विरोधी जो कर्म है उसको कलमस कहते हैं, जीव का जो भक्ति विरोधी तत्व तो हृदय में छिपा हुआ है, भक्ति करना नहीं चाहते, निरंतर दुष्कर्म में लिप्त रहते, कलमस भक्ति विरोधी कर्म, टीका में लिखे भक्ति विरोधी कर्म को तो कलमस कहते। तो महाप्रभु कोई रूप दर्शन कर ले वा महाप्रभु किसी तरफ देख ले, हृदय का उनका कलमस दूरीभूत हो जाते, महाप्रभु को अस्त्र धारण करना नहीं पड़ता है, महाप्रभु झारीखंड रास्ता से चल रहे जो हिंसक जंतु है, बाघ जो एक दूसरे के विरोधी तत्व है, एक साथ खेल रहे, महाप्रभु दर्शन कर सब अपना हिंसा भूल गए, महाप्रभु का अस्त्र है उनका दर्शन मनोहर रूप, जैसे अन्य अवतारों में भिन्न भिन्न अस्त्र धारण करके जगत का भक्त विरोधी कर्म से उसको दूरीभूत करके सठिक रास्ता में लाए, अन्य अवतारों में अस्त्र धारण किए, ठाकुर जी ने प्रभु ने अस्त्र धारण किए, धारण करके जीव के जो भक्ति विरोधी कर्म युक्त है वहां से हटा करके भक्ति विरोधी कार्य भक्ति अनुकूल कार्य में लगाया अन्य अवतार में, किंतु महाप्रभु अवतार में अस्त्र का धारण किया, उनका रूप कोई दर्शन कर ले व महाप्रभु किसी को दर्शन कर ले, एक बार महाप्रभु रास्ता में चल रहे थे और एक जो धोबी है, धोबी अपना कपड़ा धो रहे थे, तो महाप्रभु आनंद में अपने नाम कीर्तन करते हुए चल रहे थे, तो धोबी कह के, धोबी एक बार कृष्ण बोल कृष्ण बोल, धोबी कहना नहीं चाह रहे थे, तो आखिरी समय महाप्रभु कहे, जब देखे कि बाबा पागल, माने एक बार कृष्ण बोलने से बाबा यहाँ से चले जाएंगे, हमारे कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, तो एक बार बोल दे हरिनाम हरे कृष्ण, कृष्ण एक बार बोल दिया, और जैसे कृष्ण बोल दिया उनका माने और कुछ काम करने के मन नहीं कर रहे, वो चाहे कि निरंतर कृष्ण नाम जिभावे स्फुरित होता रहे। तो उनकी जो पत्नी धबिनी, उनकी जो पत्नी आई और देखे तो पागल हो गया, संसार चले कैसे है, सब लोग इस प्रकार के, तो गांव वो सोचने लगे कि इनका कोई भूत प्रेत लग गया, इसका कोई भूत प्रेत लग गया। तो जब सब गांव के लोगों को बुला के लाए, जो उनको स्पर्श किया, जो उनको देखा, वो सब भी पागल हो गए, वो कृष्णा में डूब गया और महाप्रभु वहां से भाग गए। तो इस प्रकार के महाप्रभु के नाम संकीर्तन का प्रभाव था। एक बार महाप्रभु जब जल में समुद्र के, महाप्रभु कृष्ण भावावेश में समुद्र जमुना को जमुना समझकर समुद्र में झाप दे, और झाप देते ही और रात में गंभीरा में देखे महाप्रभु नहीं है, तो स्वरूप दामोदर निकले, कहाँ महाप्रभु है। महाप्रभु जब जिस समय गंभीरा में रहते थे, वो देवर से घिसते थे, घिस करके सोचते कि मैं इस रास्ता निकालूंगा, रास्ता निकाल कर बाहर चला जाऊंगा। इतना कृष्ण विरह का ताप है, कृष्ण विरह का प्रचंड ताप है, उसका सहन नहीं कर पाते महाप्रभु। तो महाप्रभु सोचते कि मैं चले जाऊंगा, और महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो निकल गया, निकल कर जाकर समुद्र में जमुना सोचकर वहाँ झाप दे दिया कि शायद कृष्ण यहाँ मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। और जैसे झाप झाप दिया, उसमें वहाँ डुबकी लगाया, तो एक मछुआ रात में जो मछुआ पकड़ते, तो उनको मछुआ माने मछली हिसाब से उनको मिल गया। और जैसे महाप्रभु को टच किया, उनका भी रोग लग गया। हाँ, अरे ये तो कृष्ण कृष्ण उनका जिहा पे निरंतर होने लगे। जिसमें वो जा रहे थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उधर से आ रहा था, जब उनका इस प्रकार का प्रभाव देखा, तो कहे कि आप ऐसे व्यक्ति को देखा, बोले हाँ वो तो एक है वहाँ समुद्र किनारे में ऐसे है, तो बोले वहाँ भूत है, आप जाइए मत। किंतु जैसे वहाँ गए, उनका एक छापड़ मारा स्वरूप दामोदर ने, और उनका बोले नहीं आप चलिए कहाँ है दिखा दो, फिर ले जाकर दिखाया। और उनका कहने का उद्देश्य, महाप्रभु जो स्पर्श करते थे, जो उनका एक बार महाप्रभु उनका एक पुत्र एक बार दर्शन कर लेते, तो उनका एक कृष्ण नाम का रोग चढ़ जाता था, उनका कलमस पूरी तरह दूरीभूत हो जाता। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। और उनके पाने के उपाय क्या है, जग्गई जग्गई संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। कोली युग में सेवा पूजा के लिए बहुत उपकरण की जरूरत होती है, जैसे हम लोग अर्चन करते, काफी चीज की जरूरत होती है कि उसके बिना अर्चन नहीं हो सकती है। तो किंतु कोली युग में संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसहा, जो सुमेधा व्यक्ति है, उस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्रीमन महाप्रभु की कृष्ण की आराधना करेंगे। तो ये जो सप्त श्लोक जो है, जो सुमेधा है, जो महाप्रभु के संकीर्तन के पिता कहा गया, महाप्रभु संकीर्तन के जनक कहा गया, संकीर्तन के पितरो कमलाय ताक्षो विश्वम भरो दिज भरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। महाप्रभु संकीर्तन के पिता है, जैसे पिता का पुत्र के प्रति कितना स्नेह है, पिता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह है। अब महाप्रभु संकीर्तन के पिता है, अगर पिता अगर कोई महाप्रभु प्रसन्न करना चाहे, वो खूब संकीर्तन करे। पहले संकीर्तन का प्रभाव नहीं था, कोई महाप्रभु से पहले कोई संकीर्तन नहीं करता था, सब ऐसे ही मैंने भिन्न भिन्न जैसे सत्य त्रेता दापर में भिन्न भिन्न पंथ था। कृते जय तो विष्णु, सत्य युग में ध्यान का पंथ था, ध्यान उपाय से, क्योंकि हजार हजार बच्चर मनुष्य का आयु था, और दापरे त्रेतायाम जजतम अखोय, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मन असमय यज्ञ गोमेद यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे। और दापरे परिचर्यायाम, दापर में अर्चन सेवा, ठाकुर जी की परिचर्या करके ठाकुर जी को प्रसन्न करते थे। दापरे परिचर्यायाम कोलो तद हरि कीर्तनाथ, कलि युग में एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए खूब जमकर नाम करें, इतना अच्छा से नाम करें कि जीवा से कभी नाम पर छूटे ना, रोम रोम में कृष्ण नाम स्फुरित हो, इसी को नाम ग्रहण कहा जाएगा। किभावे लय लेना प्रेम उपजाए, निरंतर अगर नाम किया जाए तो उसमें जीवा में ये जो हमारा जो नस नस में ये सप्तगुण का प्रकाश आ जाएगा। हमारे हृदय अभी कलमस है क्योंकि हम विषय का दर्शन कर रहे हैं, निरंतर जो पांच इंद्रिय जो है पांच विषय के ऊपर जो जा रहे हैं, हृदय निरंतर विषय से विष ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हृदय विषमय हो गया। इस विषमय को विषाक्त से मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, निरंतर नामामृत का पान करना पड़ेगा, अमृत पीने से विष का नाश हो जाएगा, इसलिए अमृत पीने की आदत बढ़ाना पड़ेगा। किस प्रकार से, आहार निद्रा जो समय जहाँ ज्यादा व्यय होता है उसको संकुचित करके किस प्रकार से नाम में डूबोना, अपने मन को डुबोया जाए, ऐसे चिंतन करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय प्रभु का नाम सुमिरन करें। कि समय कम, किसी समय किसी क्षण ये शरीर नाश हो जाएगा, ये शरीर मिला एकमात्र प्रभु के नाम गुण कीर्तन के लिए। महाप्रभु कृष्ण वर्णम, निरंतर प्रभु के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कर रहे और सबको करा रहे। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम, जिनकी कांति अकृष्ण और सांग उपांग अस्त्र पार्षदम, अस्त्र अपना मनोहर रूप यही महाप्रभु का अस्त्र है और कोई दूसरा अस्त्र नहीं। अन्य अवतारों में ठाकुर जी अस्त्र धारण करते असुर आदि को संहार करते, किंतु कलियुग में महाप्रभु एकमात्र अस्त्र अपना मनोहर रूप के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा जीवेर कलमस जो भक्ति विरोधी कार्य है उसको उन्होंने नाश किया। और उनकी पावर पाने के उपाय क्या है, संकीर्तन प्राय, यज्ञ तो करना पड़ेगा, यज्ञ के बिना चित्त शुद्धि नहीं होगा, तो यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ कैसे करें, संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के माध्यम से हम श्रीमन महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। जजंति ही सुमेधा, जो करता है सुमेधा है और जो नहीं करता है वो कुमेधा है, उसका बुद्धि खराब हो चुकी है। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है वो निश्चित रूप से, और श्री चैतन्य महाप्रभु सांप्रदायिक से नहीं, महाप्रभु सबके लिए है, शुद्ध गौड़िया के नहीं, महाप्रभु सबके लिए है। तो यहाँ कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसा। श्रील कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर भाव दिए, मैं इसको सुनाता हूँ। सुनो भाई, देखिए भाई शब्द जब कोई कहते ना बड़े आदर के साथ, भाई ने मैं बहुत बड़ा चीज मिला मैं आपको सुना रहे, उसी क्षेत्र में भाई कहा जाता है। हे भ्राता, भाई शब्द बड़ा प्यारे शब्द है, भाई कहने से लगता है कि बहुत अपनापन मानते हैं। ओरे भाई, सुनो भाई, ये सब चैतन्य महिमा, चैतन्य महिमा के आप सब सुनिए। ए श्लोक के कहे तार महिमार सीमा, कहे तार महिमार सीमा, कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, निरंतर ए दुई वर्ण, समझ में आ रहा है ना, ए दुई वर्ण कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, जिनके मुख में ए दुई वर्ण है, अथवा कृष्ण को कहो वर्णे निज सुखे, कृष्ण का वर्णन अपने मुख में मुख से बहुत अच्छे से वर्णन भी करते, स्वयं गाते और उसका प्रभु का नाम रूप गुण लीला सबको सुनाते। कृष्ण वर्ण शब्द अर्थ द्वित प्रमाण, कृष्ण वर्ण शब्द अर्थ द्वित प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे ना ऐसे आने, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई शब्द उनके मुख में नहीं आते, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में और कोई वर्ण नहीं है। रामादि अवतारे क्रोधे नाना शंख धरे असुरे रे করিল সংহার এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে কাহে না মারিল চিত্ত শুদ্ধি করিল সহার। यहाँ श्लोक दे रहे हैं कृष्ण कवि गोस्वामी जो रामादि अवतारों में भिन्न भिन्न असुर धारण करके जीव घर असुरत्व का नष्ट किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने दर्शन से ही सबका सबका चित्त शोधन किया। কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ আর বিশেষণ তার করে নিবারণ, কেহ তারে কহে যদি বলে যদি কৃষ্ণ বরণ আর বিশেষণে তার করে নিবারণ। কই আগে মহাপ্রভু কৃষ্ণ বলতে তো মহাপুরুষ কো নিষেধ করতে, নেই নেই মুঝে কৃষ্ণ মত কহো। দেহকান্তে হয় তার অকৃষ্ণ বরণ, মহাপ্রভু দেহকান্তি সে অকৃষ্ণ বরণ পীত বরণ, অকৃষ্ণ বরণ কহে পীত বরণ, অকৃষ্ণ বরণ কা অর্থ করে মহাপ্রভু পীত বরণ। অতএব শ্রীধর গোস্বামী ইসকা প্রমাণ দে রে, কিন্তু কৃষ্ণ বরণ কাজ শব্দ কই খণ্ডন ভি কর সকতে, রূপ গোস্বামী বাদ ইসকা অর ডিটেল সুন্দর সমঝা রে। কলৌ য বিদ্যাংস স্ফুটম অভিযজন্তে দুতি ভরাত অকৃষ্ণাঙ্গম কেহ কৃষ্ণম মখবিধি যজ্ঞৈ কীর্তনোত্ময়ে উপাস্যাম চ প্রাহুর্বিলস স চৈতন্য দেব কৃপাম অতীতরাম ন কৃপয়তু। ইসকা অর্থ এই হ্যাঁ যে কলিযুগ মে যে অকৃষ্ণ হ্যাঁ যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অকৃষ্ণ পীতবরণ হ্যাঁ সব বিদ্বান লোক ইনকা ভজন করেন, যে বিদ্বান পুরুষ হ্যাঁ যে বুদ্ধিমান পুরুষ হ্যাঁ যে সুমেধা হ্যাঁ जो पीत वरण श्री चैतन्य महाप्रभु इनका जजन करेंगे। और चतुर्थ आश्रम में जो लोग हैं सन्यासी लोग भी सन्यासियों के भी उपास्य हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी उपासना करेंगे। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक रूप से मुझ पर कृपा करें। शिल रूप गोस्वामी पा इसका शिल रूप गोस्वामी इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रंग जो है कांति जो है ये अकृष्ण वरण है पीत वरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण इसका प्रमाण दे रहे हैं। प्रत्यक्ष
जीवेर कलमस तमो नाश करिवारे अंग उपांग नाम तार नाना अस्त्र धरे,
जीवेर कलमस नाश कलमस तमो नाश करिवारे जैसे तमो अंधकार में तमो तमो जो है तमो गुण जो है या अंधेरा है, अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं देते कि जब नाश हो जाते सब कुछ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जीवेर कलमस नाश कलमस जब जीव के कलमस नाश हो जाता है वो सब कुछ देख पाते हैं कहाँ क्या चल रहा है, सत सत असत का जो विचार है उसको दिखाई देते हैं। अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे, অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে, ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধর্ম, ধর্ম ভি হো আর অধর্ম ভি হো, আগে ভক্তিকে বিরোধী হ্যাঁ ও সব ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধর্ম তাহার কলমস নাশ, তাহার কলমস নাম সেই মহাতম, তাহার কলমস নাম সেই মহাতম। यह धर्म अधर्म या कर्म कुछ भी हो अगर भक्ति के विरोधी हो, भक्ति भगवान के प्रति विधान के लिए नहीं हो तो उसका कलमस कहा जाएगा। भक्ति विरोधी जो भी कुछ है, भक्ति क्या है एकमात्र कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रीति के अतिरिक्त ये जो हम लोग भजन कर रहे हैं अगर सोचे कि हमारा पीड़ा दूर हो जाए दुख दूर हो जाए ये भी भक्ति विरोधी कर्म है। जहाँ आत्मप्रीति जहाँ आत्मसुख की इच्छा है आत्मप्रीति वांछा है अपना कल्याण की भावना है वही है भक्ति विरोधी कर्म, और जहाँ कृष्ण प्रीति भावना है वही है भक्ति का अर्थ। इसलिए रूप गोस्वामी बात कहते भक्ति मुक्ति स्प्रिहा पिशाची जावत हृदय वर्तते। जब तक भक्ति मुक्ति जब स्प्रिहा जो पाने की इच्छा हृदय में वर्तमान है तब तक भक्ति उदित नहीं हो सकती है। भक्ति को उदय करने के लिए अपना सुख सुविधा पूर्ण रूप से तय करना पड़ेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण प्रति विधान के लिए कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जो भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं किस लिए? कृष्ण प्रति विधान के लिए। भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग फल, भक्ति जोग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति जोग क्या है? कृष्ण स्मरण। आ कृष्ण स्मरण दो चीज का याद रखें, किम और कदा। किम क्या है? क्या कृष्ण मुझे मिलेगा? क्या प्रभु मुझे मिलेगा? और कदा मतलब कब मिलेगा? ये दो चीज के लिए उनका हृदय बेचैन होगा। मेरा जीवन पूरा व्यतीत हो गया, क्या मुझे प्राप्त होगा? कोई सुख भोग उनका अच्छा नहीं लगेगा इसी पीड़ा के कारण। आज पीड़ा ना होने के कारण मुझे यह संसार अच्छा लग रहा है। जब कृष्ण पीड़ा कृष्ण दर्शन की पीड़ा जब होने लगेगा तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण पीड़ा को बढ़ाने के लिए दो चीज की जरूरत है, किम और कदा। क्या मुझे कृष्ण मिलेगा? और कदा मैंने कब मिलेगा? इसके लिए स्मरण क्रंदन, निरंतर रोना। रोना ही भजन है। जैसे हम लोग हरिनाम करते ये साधन करते, साधन करने से भगवत प्राप्ति होगा। साधन से क्या होता है? साधन से जैसे किसी जगह में मंत्री व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति आते, जैसे रास्ता साफ किया जाता ना, रास्ता साफ होता है पहले, बहुत अच्छा से सैनिटाइज होता है, बहुत अच्छा से उनका क्लीन करते हैं। उसी प्रकार प्रभु आएंगे उसके लिए हृदय का निर्मल बनाना, ये साधन का यही लक्ष्य है। साधन से प्रभु प्राप्ति होगा ये भरोसा मत करिए। साधन से क्या होगा? हृदय का क्षेत्र जो है ये निर्मल हो जाएगा, प्रभु आने के लिए एक स्थान बन जाएगा। दो चीज के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, एक अपना तीव्र इच्छा, प्रभु प्राप्ति के लिए दो चीज की चाहिए, एक अपना तीव्र इच्छा, दृढ़ इच्छा, इसमें कभी कमी नहीं आने देना चाहिए, और एक है प्रभु की कृपा। हे प्रभु आपकी कृपा की जरूरत है और अपने पर अपना इच्छा की जरूरत है, दृढ़ इच्छा बनाना पड़ेगा। और दृढ़ इच्छा के लिए दो चीज की जरूरत है, किम और कदा। क्या मुझे मिलेगा? और कदा मतलब कब मुझे मिलेगा? दो चीज की जरूरत है। तो इसलिए जो मैं कहना चाहते कि किम और कदा और दृढ़ इच्छा और प्रभु की कृपा, ये दो चीज जब तक एकत्रित ना हो तब तक कृपया आशीष संबंधन है। माँ जसोदा कैसे कृष्ण भगवान है? दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रम को देखा भगवान ने, उनका साधन को भी देखा और कृपया आशीष संबंधन है, तब जाके प्रभु ने कृपा किया। इसी प्रकार हम जब तक भोग से दूरीभूत अपने मन को चित्तवृत्ति नहीं हटाएंगे, भोग से मन को नहीं हटाएंगे, आत्म सुख की भावना जब तक त्याग नहीं करेंगे, कृष्ण प्राप्ति बहुत दूर, नजदीक नहीं बहुत दूर। तो इसीलिए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके प्राप्ति के लिए जो भी साधन है वो मुझे सिखाइए। प्रभु से प्रार्थना करना एक बार बार एप्लीकेशन डालना प्रभु का नजर में आता है। इसलिए रोज प्रार्थना की, जैसे नरोत्तम दास प्रार्थना लिखे, हाँ इस प्रार्थना को रोज स्मरण करें कि कैसे लालसामय प्रार्थना, दैन्यतमय प्रार्थना, इस प्रार्थना को आचार्य ने गाया है। गाया इसलिए कि हम सब सीखे। तो कृपा और अपना दृढ़ इच्छा, साधना जो है ईश्वर, मैंने कहा ना कि उस जगह को निर्मल बनाते हैं। कोई प्रधानमंत्री आए पहले उसका जहाँ आएंगे वो जगह को पूरा साफ कर देंगे, निर्मल बना देंगे। इसी प्रकार जब हम हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम से सुविधा ये है कि आपका चित्त वृत्ति निर्मल होते जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम आनंदाम्बदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से जब हम हरिनाम करेंगे सात प्रकार के फल प्राप्त होंगे। आखिरी में ये नामे साधन ही भक्ति, भक्ति ही साधन और भक्ति ही सिद्धि, साधन भी भक्ति सिद्धि भी भक्ति। हम जो हरिनाम कर रहे ये भी भक्ति है, ये कोई खराब कुछ नहीं, इसमें निरुत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं। तबे प्रभु की कृपा है, प्रभु नाम में ठीक जैसे नाम से आप प्रसन्न होंगे ऐसे नाम हम ले नहीं पा रहे, हे प्रभु वो नाम हमारे जीवा से आप कराए। कि भावे लय ले नाम प्रेम उपजाए, जैसे आप प्रसन्न होंगे ऐसे आप मुझे यंत्र बनाकर अपने प्रसन्नता के लिए यूज करिए, ये है भावना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बाद में लिखेंगे जे संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन। अंगोपांग अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते से सब अस्त्र इहा पाषंड दौलिते नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर श्रीवासादि परिषद सैन्य सहसलैया सैन्य संगे लैया से दुई सेनापति बुले कीर्तन कोरिया पाषंड दलन बना नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भज से धन्य से तो सुमेधायार कुबुद्धि संसार सर्वयज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार सर्वयज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार निरंतर कृष्ण नाम करे। वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर एक पद लिखे, तो मैं सुना था दो तीन मिनट पे। वल्लभाचार्य एक आचार्य है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के, एक बड़े दिव्य आचार्य हुए, किंतु बड़ा सुंदर नाम महिमा के ऊपर उन्होंने एक सूत्र लिखे। मधुरम मधुरेभ्यपि मंगलभ्यपि मंगलम पावनम पावनेभ्यपि हरिर्नाम एव केवलम। मधुरम मधुर से भी मधुर, पावन से भी पावन, मंगल से भी मंगल, ऐसे हरिनाम को मैं हरिनाम ही एकमात्र हमार भरोसा, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ परिजंतम सर्व सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नाम एव केवलम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर नीचे तिनका तक सर्व मायामयम सब कुछ माया, माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सब मायामय, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, किंतु सत्य क्या है? हरिनाम सत्य है। इस मायामय क्या सत्य है? हरिनाम एकमात्र सत्य है, इसमें कोई भेजाल नहीं है। और देखिए सबसे बड़े हम लोग भाग्यवान है, जैसे महाप्रभु दिया हरिनाम उससे कुछ मिलावट नहीं, अभी तक किसने कुछ मिलाया नहीं। और जो ये प्रवचन में कुछ मिलावट हो सकती है किंतु हरिनाम में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए निरंतर नाम का नाम सुधा का पान करें। स गुरु स पिता चापि स माता बांधव सपि शिक्षे चेत सदा सदा स्मर तुम हरिर नाम एव केवलम। वही नामे एकमात्र पिता, नामे माता, नामे बंधु, हाँ मन को इसी प्रकार शिक्षा दे हरे नाम एव केवलम, नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। निश्वास नहीं विश्वास, निश्वास में विश्वास है, विश्वास नहीं है। निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्य से कीर्तनियस मतिर्वल्लाद हरे नाम एव केवलम। निश्वास नहीं विश्वास कदा कदा रुद्ध भविष्यसि, कब ये रुक जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसीलिए क्या करें, निरंतर कीर्तन करें, हरे नाम एव केवलम, बाल्यावस्था से निरंतर नाम कीर्तन करें।
हरि सदा वसे जत्र जत्र भागवता जनः गायन्ति भक्ति भावेन हरि नाम एव केवलम। हरि सदा वसेत, हरि वही व्यवस्थे वास करते जहाँ भागवत जन रहते हैं, भगवान के भक्त जहाँ रहते हैं वही हरि रहते हैं। और उन लोग क्या करते, भक्ति भावेन गायन्ति, भक्ति भाव से प्रभु का नाम गायन करते। इसलिए जिस समय कीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, आके बैठ कुछ समय बैठने से लाभ मिलेगा। गायन्ति भक्ति भावेन हरिनामैव केवलम, ओहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरम जतः काचयम् विस्मृतम रत्नम हरिनामैव केवलम। अयम काच, सांसारिक जो भोग सुख है ये सब काच के समान है, और रत्न क्या है, हरिनाम। अब विस्मृतम रत्नम, मैं भूल गया रत्न को, काच को अपना असल धन मना लिया, मान लिया काच को अपना धन मान लिया और अपना रत्न को भूल गया। ओहो दुख, ये सबसे बड़ा दुख है। ओहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम जत, इससे बढ़कर दुख नहीं है। तो क्या करना है, हरे नाम एव केवलम, एकमात्र हरे नाम का ही आश्रय ले। दियताम दियताम कर्णो नियताम नियताम वाच गियताम गियताम नित्यम हरे नाम एव केवलम। दियताम दियताम कर्णो, सबको बांटे, सबको प्रदान करे। नियताम नियताम वाच, निरंतर इसी का ही वर्णन करे। गियताम गियताम नित्यम, निरंतर गायन करे हरे नाम एव केवलम, हे प्रभु आपका नाम का जय हो। इसी प्रकार से हम नाम पर अधिक ध्यान दें, नाम को आस्वाद करें, नाम के लिए अपना सुख सुविधा त्याग दे, भोग की परिहार करें, तब जाकर कुछ नाम का स्वाद हम सबको प्राप्त होगा। जब तक हम भोग सुविधाओं को त्याग नहीं करेंगे तब तक नाम का स्वाद प्राप्त करना भारी कठिन है। नाम के लिए नींद भी छोड़ना पड़ेगा, नाम के लिए सुंदर सुंदर भोग भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एकमात्र नाम लुख है नाम, जब हम लुखों से दूर हो जाएंगे तब हम नाम से वंचित हो जाएंगे। इसलिए लुख निरंतर जिभावे, हम कुकिंग कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम प्रभु का नाम सुमिरन करें। और जो इस प्रकार कीर्तन करते हैं महाप्रभु कहते वो सुमेध है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम जग्गे संकीर्तन प्राय जजंत ही सुमेधसा। आ महाप्रभु है संकीर्तन के पिता, जो संकीर्तन को प्रेम, संकीर्तन से प्रेम करते हैं महाप्रभु, नाम कीर्तन से प्रेम करते हैं महाप्रभु, उसको अधिक प्यार करते हैं। जैसे पिता का पुत्र सबसे प्यारे होते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार जो नाम का स्वाद लेंगे महाप्रभु उसके बस में हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, किसी का कोई शब्द प्रश्न कुछ जोड़ना है इसमें है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।